हे एवरीवन, दिस इज ब्रिस टॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपको सीमा असीम सक्सेना की लिखी हुई एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी का शीर्षक है क्यों सिया ही क्यों। सिया ने घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई, देखा रात के 1 बज रहे हैं, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। घर के सब लोग सो चुके हैं। जरा सी देर को पापा की खर्राटों से उसका ध्यान भंग हो जाता है। इसके बाद फिर वह अपनी दुनिया में मगन हो जाती है, जहां हर्ष और उसके सिवाय कोई और नहीं है। अचानक से उसका बहुत तेज जी घबराया। उसने कमरे की बंद खिड़की को खोल दिया। एक सर्द हवा का झोंका उसके बालों को सहलाते हुए पूरे बदन को ठंड से कपकपा गया। लेकिन जी का घबराना ना रुका तो वह वॉशरूम चली गई। वहां पर उसने ढेर सारी उल्टी कर दी, आंखों से पानी बह निकला। इस भयंकर सर्दी में भी उसका शरीर पसीने से भीग गया। ये क्या हो गया? ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं खाया था, मन ही मन हुआ था खाने का। कई दिनों से उसकी तबीयत गड़बड़ चल रही थी और उससे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। पर उसे खुद का होश ही कब है जो यह सब महसूस करती, डॉक्टर से कंसल्ट करती। जब उल्टी आई तो होश आया। उसने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया। अरे 2 महीने हो गए, उसके पीरियड्स अभी तक नहीं हुआ था। तो क्या हुआ? ओ नो, ऐसा नहीं हो सकता। वह घर वालों को क्या जवाब देगी या हर्ष को क्या बताएगी? क्या वे उस पर विश्वास करेंगे? क्या उसे भी सीता की तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? लेकिन अग्नि परीक्षा तो हर्ष के आने पर देनी होगी। अभी घर में, समाज में इन सब का सामना कैसे करेगी? आत्ममंथन चलने लगा। सोचा अभी हर्ष को फोन करके सब बता दें। फिर मन में आया, चलो अब सुबह ही बात करेगी। अब कुछ देर पहले ही बात हुई थी। हर्ष ने गुड नाइट विश करते हुए कहा था कि आज बहुत थक गया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ। ऐसे में उसे जगाकर कुछ भी कहना सही नहीं लगा। करवटें बदलते हुए सारी रात गुजर गई। रजाई में मुंह ढाक कर भी शरीर में गर्माहट का नामो निशान नहीं था। जब सुबह की थोड़ी सी खुली हुई खिड़की की झिरी से सूरज की किरणों ने उसके माथे को चूमा तो वह हल्के से मुस्कुराकर उठ गई। रात में कब सो गई थी उसे पता ही नहीं चला। घड़ी में समय देखा, सुबह के 10:30 हो रहा था। तो क्या माँ ने उसे चाय के लिए भी नहीं बुलाया? वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई। देखा पापा ऑफिस जाने को तैयार खड़े हैं और माँ किचन में परांठे सेक रही है। क्यों सिया बेटा, उठ गई तुम? माँ के स्वर में व्यंग साफ नजर आ रहा था। माँ, क्या आज ज्योति काम पर नहीं आई? सिया ने माँ की बात को अनसुना करते हुए उनसे ही सवाल दाग दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि वो आजकल छुट्टी पर चल रही है? वैसे तुम्हें पता भी कैसे होगा, खुद का तो होश नहीं है, घर पर ध्यान कब रहेगा तुम्हारा? सिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। सच ही तो कह रही है माँ, उसे होश ही कहाँ रहता है इन दिनों, खुद को बिल्कुल भूल चुकी है। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी चाय को केतली में से एक कप में चाय लौटी और कप को दोनों हाथों में पकड़कर अपने कमरे में आ गई। माँ से बहस करने में अच्छा है अपने कमरे में चुपचाप आकर बैठ जाया जाए। वैसे गलती जब खुद की हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। चाय पीते हुए वह हर्ष के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि हम जिससे मन के बंधन में बंधे होते हैं उससे दूर रहकर भी प्रतिपल उसी से बात करते हैं। जुबां के खामोश होते हुए भी हमारी रूह आपस में बातें करती रहती हैं। एक को तकलीफ होने पर दूसरे को पता चल जाता है। तभी उसके मोबाइल की फोन की घंटी बज उठी। देखा तो हर्ष का फोन था। अरे हर्ष, कैसे हो तुम? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, उसने जल्दी से फोन उठाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसी हो और मेरे बारे में क्यों सोच रही थी? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बस यही सोच रही थी कि इस समय तुम मेरे पास होते। फिर वही बात, पता है ना मैं 5 महीने के बाद आ रहा हूँ। अच्छा अभी फ़ोन रखता हूँ, शाम को बात करूँगा। हर्ष सुनो प्लीज़, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं रात भर सो भी नहीं सकी थी। ऐसी क्या बात हो गई जो रात भर नहीं सोई तुम? मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, फिर भी तुम बताओ। चलो हो जाने दो देर, आज देर ही सही। हर्ष तुम्हें याद है ना कॉलेज टूर के वो 4 दिन? तो ये ज़रूरी बात है। वैसे वो दिन कब कहाँ कभी बुलाए जा सकते हैं? अरे नहीं ये बात नहीं है, मेरी पूरी बात तो सुनो। सुनाओ, लेकिन ज़रा जल्दी कर लो यार। वो सिर्फ 4 दिन मात्र नहीं थे, बल्कि ये वो दिन थे जिन दिनों की वजह से हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक सूत्र में बंध गए थे। हम अच्छा तो ये है ज़रूरी बात, मुझे पता है हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नहीं भाई, आई हैव कंसीव। ओ नो, यह कैसे हुआ? अब क्या होगा? बस यही सोचकर मैं परेशान हूँ कि अब क्या होगा। चलो परेशान होना छोड़ो, परेशान होने से क्या होगा? अभी मेरा आना तो 5 महीने बाद ही हो पाएगा, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं? एबॉर्शन? लेकिन हर्ष वो इतना आसान नहीं है सिया, बस यही एक तरीका है, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, पहले दीदी की होगी फिर मेरी। ओके चलो अब शाम को बात करते हैं, हर्ष ने फोन रख दिया। हर्ष ने कितनी सहजता से कह दिया था। सिया असमंजस की स्थिति में आ गई थी, अब वह क्या करेगी? माँ को बताना इतना आसान नहीं था, वे वैसे ही आजकल उससे परेशान है, सब कुछ बहुत मुश्किल है, पहाड़ सी परेशानी सर पर आ गई। एक तो वह बिरह और इंतजार के गम में घुल रही थी, ऊपर से ये समस्या, इसका तो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। उसे समझ आ रहा था कि गलती तो उसकी ही है, मर्द के अंदर तो एक जानवर रहता है, उसे ही इतना आगे क्यों बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसने प्रेम के कारण ही समर्पण किया था। क्या पता था उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सारे दर्द उसके हिस्से में आ जाएंगे। अब उसे दूर दूर तक हर्ष का साया भी नजर नहीं आ रहा था। उस सुख के तो वे दोनों ही साझेदार थे, फिर दुख सिर्फ अकेले उसे ही क्यों? हर्ष के इंतजार में परेशान वह एक और परेशानी में गिर गई थी। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, सारा दर्द अकेले औरत के हिस्से में ही होता आता है। इतना दर्द झेलने और सहने के बाद भी वह सबको खुशी और प्रेम ही बांटती है, और सब कष्ट अपनी झोली में डाल लेती है। उसका नरम दिल और मासूम मन कभी भी किसी से भी नफरत कर ही नहीं सकता, तभी तो प्रेम दया करुणा वात्सल्य की मूरत होती है एक औरत। अब उसे निर्णय लेना ही था, एक कठोर निर्णय। उसे खुद को और अपने प्रेम को समाज के आगे नीचा नहीं दिखाना था, फिर परिवार की मर्यादा, वो भी तो उसके ही हिस्से में आई है। अपने मम्मी पापा को किसी भी हाल में समाज के आगे बदनाम नहीं होने देगी। क्या वह खुद को ख़त्म कर ले? नहीं, इससे तो समस्या का निदान नहीं बल्कि और ज़्यादा बातें बनेंगी। हाँ यह अलग बात है कि यह सब देखने सुनने के लिए ही सही नहीं, वह नहीं होगी। उसे अभी अपनी प्रेगनेंसी से निजात पानी होगी। आज सिया का सचमुच बहुत मन खराब हो रहा था, कॉलेज में भी पूरे दिन मन ही नहीं लगा। उसने घर आकर फौरन टीवी ऑन कर लिया, शायद मन थोड़ा अच्छा हो जाए। देखा टीवी पर रामायण सीरियल आ रहा था, सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं, हरे राम की प्रतिध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। बीच बीच में उन खर्राटों की आवाज़ें भी आ जाती हैं जो पहरे पर बैठी राक्षसी के सोने से उत्पन्न हो रही हैं। वहीं पर फलों का भरा हुआ एक टोकरा भी रखा हुआ, लेकिन सीता जी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाए। वे सुबह से निराहार हैं। अन्न का त्याग तो उन्होंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन रावण साधु का बेस बनाकर उन्हें पंचोटी से उठाकर ले आया था। अभी तक वो राम का इंतजार करते हुए फलाहारी व्रत कर रही थी, परंतु आज से लगता है उन्होंने फलों का भी त्याग कर दिया, और शायद ये प्रण ले लिया है कि जब तक राम ना आ जाएं, वे निराहार ही रहेंगी। हे भगवान, इतना कठोर तप राम को पाने के लिए कैसे सहन किया होगा उन्होंने, कैसी रही होंगी वो राक्षसों के बीच में, और फिर बार बार रावण का आकर भरमाना। महान तपस्वी सोने की लंका का स्वामी प्रचंड ब्राह्मण रावण भी सीता जी का राम के मोह से बिलक नहीं कर पाया था। वे साध्वी बनी इतने बरस तक दिन रात राम का नाम जपती हुई अशोक वाटिका में ही बैठी रही, केवल इस विश्वास के सहारे कि राम एक दिन अवश्य आएंगे, लेकिन कब ये वो भी नहीं जानती थी। फिर भी वे प्रतीक्षारत थी, क्या मैं इतना त्याग कर पाऊंगी? शायद नहीं, और सीता जी के जैसा तो नाम मात्र भी नहीं। जबकि सिया तो जानती है, बल्कि उसे पक्का पता है कि नियत दिन और तारीख को हर्ष लौट आएंगे, आ जाएंगे वो वापस और बना लेंगे उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना। हो जाएगा उसका इंतजार खत्म, फिर भी इस समय वो विरह वेदना सिया झेल रही है वह बहुत दुष्कर है। सच में पूरी रात जाग कर निकल जाती है, और अगर जबकि लग भी जाए तो हड़बड़ा कर आँखें खुल जाती हैं। लगता है जैसे कि हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे जगा रहे हों। एक टीस भरी दर्द के लहर उसके सीने में उठती है। उफ, कितना कष्टप्रद है ये। लगता है जैसे शरीर से किसी अंग को काट कर दूर फेंक दिया है या बहुत दूर उछाल दिया है, और उससे रिश्ते खून को रोक नहीं पा रही। जब जाते समय हर्ष ने कहा था कि मात्र 6 महीने की ही तो बात है और यह इंटर्नशिप करनी भी जरूरी है। हर्ष की यह इंटर्नशिप लगता है उसकी जान लेकर ही छोड़ेगी। हर्ष उससे करीब 3000 किलोमीटर दूर है, वो बीच में मिलने भी नहीं आ सकते। हालांकि फोन पर रोजाना ही बात हो जाती है, परंतु फोन पर बात करते हुए उसने उससे मिलने की हुड़क कुछ और तेज हो जाती है। सिया व्याकुल हो उठती है। हर्ष, तुम मेरे पास में होते, मैं तुम्हें हिलक कर अपने गले से लगा लेती और अपने सारे दुख दर्द भूल जाती। वह ऐसा सोचती है, लेकिन सोचने से कभी कुछ हुआ है? उसे ध्यान आता है कि सीता जी तो नवविवाहिता थी और वो अपना मधुमास मना रही थी। बीच में रावण आ गया और उन्हें राम से अलग कर दिया। सिया और हर्ष के बीच में आ गई रावण रूपी नियति। समाज, दुनियादारी, पैसा और इंटर्नशिप सब टांग अड़ाकर खड़े हो गए। चले गए हर्ष उससे दूर। वो क्या गए, उसका सुख चैन के साथ मन भी संग ले गए। किस दुनिया में रहती हो, क्या तुम्हें कतई होश नहीं, माँ अक्सर डांटते हुए कहती हैं। सच ही तो कहती हैं माँ, कहाँ रहा उसे होश या फिर कुछ और याद। उसे समझ नहीं आता आखिर वह क्यों सी जान से हर्ष को चाहती है। ऐसा उसमें है क्या जो किसी और में नहीं दिखता? देखा जाए तो वह उसके प्यार में पागल हो गई है, उसे अपने अंतर्मन में बसा लिया है। अब उसके जैसा तो कोई और मिल भी नहीं सकता, ऐसा वो सोचती है। उसे याद आता है उसने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई औरत किसी को चाहती है तो टूट कर या नफरत करती है तो भी वह टूट कर ही करती है। प्यार में जीवन संवार देती है और नफरत में बर्बाद कर देती है। वो सच्चा प्यार करती है अपने हर्ष से, किसी नेमत की तरह प्रेम उनके जीवन में उतर आया है। वह तो इस समय सर से लेकर पांव तक हर्ष के प्यार में डूबी हुई है, तभी तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं या कहते हैं फौरन मान लेती है। यह दिल ऐसा ही होता है, जब उसका जी चाहता है या किसी पर फिदा होता है तो किसी बड़ी से बड़ी बात को बुरा नहीं मानता और कभी जरा सी बात पर ही नाराज हो जाता है। यह दिल भी बड़ा बेदिल होता है। नियम से हर्ष फोन पर बात करते हैं, फिर भी मन में घबराहट ये बेचैनी सी क्यों जान पड़ती है। लेकिन इस क्यों का जवाब सिया के पास बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सब बहुत आसान है, हर्ष ने कहा था। हर्ष की यह बात उसके दिमाग में पूरे दिन मंथन करती रही। क्या सच में सब कुछ बहुत आसान है? कहने और झेलने में कितना अंतर है। लेकिन तब भी वह सहेली गीतिका के साथ नर्सिंग होम पहुंची थी। डॉक्टर ने पूछा था पति कहाँ है। गीतिका ने आगे आकर बात को संभालते हुए कहा था कि वो बाहर हैं और इसको अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर अभी से बच्चे के चक्कर में आ गई तो इसका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। प्लीज अभी से निजात दिला दीजिए। कितना मुश्किल था, लेकिन गीतिका ने किसी तरह डॉक्टर को मना लिया था। बिना किसी हिचक के ही उसने सारी जिम्मेदारी ले ली थी और खुद ही आगे बढ़कर साइन भी कर दिए थे। आज अगर गीतिका उनका साथ ना देती तो सिया ने अपने कानों के इंगर्स और फिंगर रिंग निकाल कर गीतिका को पकड़ा दिया। अब वह ओटी की चार दीवारों के भीतर अकेली थी, जहां बड़ी बड़ी मशीनें और ऑपरेशन के सामान उसके डर को बढ़ा रहे थे। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। हर्ष, कहां हो तुम, आ जाओ ना। भले ही ये दर्द अकेले मुझे ही सहना है, पर तुम्हारे होने भर से ही मेरे सारे दर्द को भूल जाऊंगी। ये मेरे दिल की आवाज है हर्ष, कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार हर दर्द के बाद और मजबूत हो जाता है। अब डॉक्टर की आवाज उसके कानों में सुनाई आ रही थी। वो कह रही थी, जल्दी एनेस्थीसिया लगाओ। उसने डर से अपनी आंखें अभी भी नहीं खोली थी। उसे कोहनी के पीछे हिस्से में इंजेक्शन के दर्द भरी चुभन हुई थी। एक तेज चीख उसके मुंह से निकली और दिमाग कहीं अवचेतन में चला गया था। क्या वह चीख उसके हर्ष तक पहुंची होगी? प्रेम करने की ये कैसी सजा मिली है? और इंतजार, परीक्षा व त्याग हर बार औरत को ही करना पड़ेगा? यही एक औरत की नियति है, चाहे सिया हो या सीता।